ृक्षण प्रजाष रक्षिष्यंजसेन्द्रवत्। अनुवाद और तात्पर्य श्रील प्रभुपाद द्वारा। अनुवाद: जब वर्षा नहीं होगी और जल के अभाव से नागरिक महान संकट में होंगे, तो यह राजवेशधारी भगवान स्वर्ग के राजा इंद्र के समान जल की पूर्ति करेगा। इस प्रकार अवर्षण या सूखे से वह नागरिकों की रक्षा कर सकेगा। तात्पर्य: सूर्य तथा इंद्रदेव से राजा पृथु की तुलना अत्यंत उपयुक्त है। स्वर्गलोक के राजा इंद्र पर पृथ्वी तथा अन्य लोकों में जल वितरित करने का भार है। यहाँ यह इंगित है कि इंद्र द्वारा अपना कार्य ठीक से न किए जाने पर राजा पृथु स्वयं वर्षा जल का वितरण कर सकेंगे। कभी कभी स्वर्ग के राजा इंद्र पृथ्वीवासियों पर इसलिए कुपित हो उठते हैं क्योंकि उन्हें प्रसन्न करने के लिए वे यज्ञ नहीं करते, किंतु राजा पृथु श्री भगवान के अवतार होने के कारण इंद्र की कृपा पर निर्भर नहीं रहेंगे। यहाँ पर भविष्यवाणी की गई है कि यदि वर्षाभाव हुआ तो राजा पृथु अपनी दैवी शक्ति से इस अभाव को दूर कर देंगे। ऐसी शक्ति का प्रदर्शन वृंदावन में वास करते समय भगवान कृष्ण द्वारा भी किया गया। जब इंद्र ने 7 दिनों तक वृंदावन में अखंड वर्षा की तो श्री कृष्ण ने ही गोवर्धन पर्वत को छत्र की भांति धारण करके निवासियों की रक्षा की थी। इसीलिए भगवान कृष्ण को गोवर्धनधारी कहा जाता है। अनुवाद दोहराइएगा: जब वर्षा नहीं होगी और जल के अभाव से नागरिक महान संकट में होंगे, तो यह राजवेशधारी भगवान स्वर्ग के राजा इंद्र के समान जल की पूर्ति करेगा। इस प्रकार अवर्षण या सूखे से वह नागरिकों की रक्षा कर सकेगा। कृष्णा, राजा का कर्तव्य ये होता है कि प्रजा की सारी आवश्यकताओं की पूर्ति करे। अगर प्रजा किसी भी चीज में किसी भी चीज की वजह से दुखी है, अगर किसी चीज का अभाव है और इस कारण उनको कष्ट पहुंच रहा है, तो इसके लिए राजा जिम्मेदार होता है। अगर राजा महाराज पृथु है, जो कि स्वयं भगवान श्री कृष्ण के अवतार है, तो अपने ही बल से वो इन सारी आवश्यकताओं की पूर्ति कर सकता है और देख सकता है कि राज्य में कोई अभाव न हो। वैसे तो राजा के अंदर सारे देवता निवास करते हैं, ऐसा कहते हैं, क्योंकि राजा अगर प्रामाणिक हो और धार्मिक हो तो सारी देवी देवताएं प्रसन्न होकर प्रकृति की सारी आवश्यकताएं प्रचुर मात्रा में प्रदान करते हैं। इसलिए राजा को धार्मिक होना बड़ा आवश्यक होता है। पृथु महाराज जैसे व्यक्ति को देवताओं के ऊपर निर्भर होने की आवश्यकता नहीं होती है, क्योंकि वह स्वयं शक्तिविश अवतार है। लेकिन अगर राजा महान वैष्णव हो, राजर्षि हो, जैसे कि महाराज युधिष्ठिर थे, जैसे कि महाराज परीक्षित थे, ध्रुव महाराज थे, प्रह्लाद महाराज थे, तो फिर भी उनको देवी देवताओं के ऊपर निर्भर रहने की आवश्यकता नहीं पड़ती है, क्योंकि जब वो श्री कृष्ण को संतुष्ट करते हैं तो खुद ब खुद देवी देवता संतुष्ट होकर सारी आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं। अब आज के श्लोक से हमें ये पता चल सकता है कि देवी देवता हर अवस्था में हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति करेंगे इस बात की गारंटी नहीं है। कभी चाहे करें, कभी क्रोधित हो गए न करें, हम उनके क्रोधित होने पर या न होने पर निर्भर होते हैं। इसलिए जो व्यक्ति देवी देवताओं की पूजा करते हुए ये अपेक्षा करता है कि मैं सुरक्षित हूं, ये सुरक्षा पूरी नहीं है। इसलिए जो व्यक्ति बुद्धिमान है वो कृष्ण के सुरक्षा के ऊपर निर्भर रहता है और इसमें पूरे शांति और सुरक्षा की अनुभूति करता है। देवताओं के ऊपर निर्भर रहने में मन की शांति नहीं होती, क्योंकि देवता किसी भी समय कुछ भी कर सकते हैं, क्योंकि देवता गण भी, कम से कम जो शुद्ध भक्त नहीं है वो देवता, अपना इंद्रिय तृप्ति चाहते हैं। जो व्यक्ति अपना इंद्रिय तृप्ति चाहता है उसके ऊपर भरोसा नहीं किया जा सकता। आज क्या करता है और कल क्या करेगा, आज अपना मित्र है कल अपना शत्रु बन सकता है, आज हमारी सारी आवश्यकताओं की पूर्ति कर रहा है कल इनको लौटा सकता है। जब कंस अपनी बहन देवकी को वसुदेव सहित रथ में सवार किए हुए वसुदेव के घर में ले जा रहा था तो उस समय आकाशवाणी हुई कि हे मूर्ख कंस, तुम नहीं जानते कि जिस लाडली बहन के विवाह में तुम इतने प्रेम से आनंद से तुम अपने बहन और उसके पति को घर लिए जा रहे हो, इसी लाडली बहन के आठवां पुत्र तुम्हारे मृत्यु का कारण बनेगा। तो कंस का चरित्र, कंस का स्वभाव बिल्कुल बदल गया उस एक क्षण में, और कंस ने तुरंत देवकी के बाल पकड़े, अपना तलवार उठा लिया और देवकी का गर्दन काटने के लिए तैयार थे। किसी न किसी तरह से वसुदेव ने उनको समझाया और रोक लिया बड़े मुश्किल से। और वसुदेव ने देखा कि कंस शांत हो गए और कंस ने कहा कि ठीक है, आखिर तुम्हारा आठवां पुत्र मुझे मारने वाला है, ये आकाशवाणी है, देवकी तो नहीं मारेगी मुझे, वसुदेव तो नहीं मारेगा और इनके पहले सात पुत्र भी तो नहीं मारेंगे, तो ठीक है, छोड़ दिया कंस ने। लेकिन वसुदेव को मालूम था कि कंस की इंद्रियां संयम में नहीं है, आज उसने छोड़ दिया, आज हमारे प्रति प्रेम का व्यवहार कर रहा है, लेकिन कल फिर से इसका दिमाग बदल जाएगा, फिर से कुछ कर देगा। इसलिए हालांकि कंस को थोड़ी राहत मिली, वसुदेव को थोड़ी राहत मिली कंस के अत्याचार से, लेकिन हर क्षण वसुदेव जानते थे कि कंस के ऊपर भरोसा नहीं किया जा सकता, किसी भी क्षण कंस कुछ भी कर सकता है। इसलिए बाद में वसुदेव के संशय वास्तव में सच निकले, क्योंकि नारद मुनि वहां आए और नारद मुनि ने आकर वहां सब गड़बड़ कर दिया। हालांकि ये भी तो कृष्ण की योजना के अनुसार ही था, क्योंकि वो चाहते थे कि कृष्ण जल्दी आ जाए, और उन्होंने कहा कि आठवां पुत्र है, ये कौन से दृष्टि से देखा जाए तो ये आठवां पुत्र है, ये देखिए ये सुंदर एक गुलाब है और उसके आठ पंखुड़ियां हैं, अभी कौन सा आठवां है, इधर से पहला, दूसरा, तीसरा से आठवां, या इधर से शुरू करते हुए पहला या आठवां। तो कंस सोच में पड़ गया, हाँ ये तो सही बात है, आठवां मतलब शुरुआत से आठवां या अंत से गिनती करेंगे तो आठवां कौन सा होगा? अगर अंत से गिनती करेंगे आठवां तो पहला पुत्र मुझे मार सकता है। तो इस तरह से थोड़े से कारण से ही ऐसा व्यक्ति जिसकी इंद्र का वश में नहीं है वो अपना मन बदल सकता है, बस इतना ही कारण। कोई भी आके उसको बहका सकता है, भड़का सकता है, क्योंकि उसकी बुद्धि पूरी तरह से पक्की नहीं है, शुद्ध नहीं है। देवता तो कंस की श्रेणी में नहीं है, आखिर वो सुर है और कंस असुर है, वो भी देवता के भगवान श्री कृष्ण के भक्त है, लेकिन सारे देवता शुद्ध भक्त न होने के कारण, मिश्र भक्त होने के कारण उनके हृदय में इंद्र तृप्ति की भावना होती है, इसलिए पूरी तरह से हम उनके ऊपर निर्भर नहीं हो सकते, कह नहीं सकते कि यही देवता जो आज हमें सब कुछ दे रहा है वो अगले क्षण क्या कर बैठेगा। इसलिए बुद्धिमान व्यक्ति देवताओं के ऊपर निर्भर न रहकर कृष्ण की सेवा करते हैं बस। अब देवता किस क्षण क्या कर बैठेंगे इसके और भी उदाहरण शास्त्रों में दिखने में आते हैं। एक बार भगवान श्री कृष्ण जब द्वारका लीला कर रहे थे तो उनकी पटरानी सत्यभामा ने इच्छा की कि रुक्मिणी देवी को भगवान श्री कृष्ण ने एक पारिजात फूल भेंट किया है। ऐसे सुना है कि कभी कभी पति अपने पत्नी को फूल भेंट करते हैं उनको शांत करने के लिए। तो इस तरह से जब सत्यभामा ने देखा कि रुक्मिणी देवी को कृष्ण भगवान ने पारिजात फूल अर्पण किया है, जो कि स्वर्गलोक का फूल है, जिसका सुगंध इतना होता है कि सारा वो सुगंध सब जगह फैल जाता है, स्वर्गीय सुगंध है उसका। तो सत्यभामा ने सोचा कि अगर रुक्मिणी देवी को एक फूल दिया है तो मुझे वृक्ष का वृक्ष चाहिए, पारिजात का। तो भगवान श्री कृष्ण से कहने लगी कि मुझे स्वर्गलोक से देवलोक से पारिजात का वृक्ष ले आओ। अरे बाबा, ये स्वर्गलोक का वृक्ष है, ये तो धरती है, नहीं मुझे चाहिए। ठीक है बाबा, ठीक है, क्योंकि आखिर ये भी श्रृंगार रस के आदान प्रदान भी विचित्र होते हैं। तो एक बार इंद्र बड़े परेशान थे, क्योंकि भौमासुर नाम का असुर जो था वो देवताओं को बड़ा परेशान कर रहा था। और ये भौमासुर कौन था? वास्तव में श्री कृष्ण का ही पुत्र था, पृथ्वी देवी उनकी माता थी, और ये देवताओं को बड़ा परेशान करता था। इसलिए इंद्र भगवान, ये इंद्रदेव भगवान श्री कृष्ण के पास आए, पाहि माम पाहि माम, जैसे कि देवी देवता अक्सर जाते हैं भगवान के पास में रक्षा के लिए, कठिनाई होती है तो देवता भगवान के पास दौड़ते हैं। हालांकि थोड़े देवता इंद्र तृप्ति करते हैं, असुर भी तो इंद्र तृप्ति करते हैं, लेकिन देवताओं में और असुर में ये अंतर होता है कि देवता भगवान के भक्त होने के नाते हालांकि वो इंद्र तृप्ति करते हैं, फिर भी जब संकट आता है तो वो जानते हैं कहां भागना चाहिए आश्रय के लिए, लेकिन असुर ये नहीं जानते। असुर सोचते हैं कि कष्ट के समय भी अपने ही बल से, अपने ही बुद्धि से हम मामले को निपटा लेंगे, लेकिन देवतागण बुद्धिमान होते हैं, इसलिए कभी कभी भूल भी जाते हैं भगवान को, लेकिन संकट आ जाता है तो तुरंत चले जाते हैं श्री कृष्ण के चरण कमलों का आश्रय लेने के लिए। तो इसी तरह से भौमासुर से विचलित होकर इंद्रदेव कृष्ण भगवान के पास में आए थे, पाहि माम रक्षा कीजिए। तो कृष्ण भगवान ने भौमासुर का वध कर दिया, अपने ही पुत्र का। देखिए कृष्ण भगवान, समोहम सर्वभूतेषु नमे द्वेष्योस्ति न प्रियः, ये भजन्ति तुमां भक्त्या मयि ते तेषु चाप्यहम्। समान दृष्टि से सबको देखते हैं, अपना पुत्र भी क्यों न हो, अगर वो पुत्र उत्पात कर रहा है, उपद्रव मचा रहा है सब जगह, देवताओं को संकट दे रहा है, कष्ट दे रहा है, तो उसे मानने के लिए भी हिचकिचाते नहीं है भगवान। लेकिन धृतराष्ट्र देखिए, अपने पुत्र का मोह इतना था कि अपने पुत्र को त्याग नहीं पाए, और इसलिए इतना सब, इतना एक बड़ा युद्ध हुआ जिसमें सारे पृथ्वी के करोड़ों सैनिक क्षत्रिय मारे गए, केवल एक वजह थी, क्या थी, कि धृतराष्ट्र दुर्योधन को त्याग नहीं पाए। दुर्योधन तो असुर था, लेकिन फिर भी समस्या का समाधान हो सकता था अगर धृतराष्ट्र अपने पुत्र को त्याग पाते, लेकिन नहीं त्यागा। भीष्म ने कहा, विदुर ने कहा, कृष्ण ने कहा, पांडवों ने कहा, लेकिन नहीं कर पाए। लेकिन कृष्ण भगवान अपने ही उदाहरण से दिखाते हैं, पुत्र भी ऐसा नालायक निकले भौमासुर जैसा, तो त्यागने की बात क्या, उसको खत्म करने के लिए भी तैयार होना चाहिए। लेकिन आजकल के जमाने में ऐसा नहीं करना है, नहीं तो पुलिस से तकलीफ हो जाएगी। त्यागने का मतलब, मारने का मतलब है अपने हृदय से, अपने हृदय से उसको त्याग देना। लेकिन कभी कभी ऐसी उल्टी परिस्थितियां भी आती हैं। हिरण्यकश्यप जैसे असुर को प्रहलाद जैसा पुत्र मिलता है और हिरण्यकश्यप सोचता है कि मुझे ऐसे भक्त को, ऐसे बेटे को त्यागना चाहिए, इसको मारना चाहिए, विपरीत बुद्धि। तो इस तरह से भगवान श्री कृष्ण ने उदाहरण दिया, दिखलाया, भौमासुर का वध कर दिया और फिर अमरावती गए, जो कि इंद्र की राजधानी है स्वर्गलोक में, हमारे महाराष्ट्र के अमरावती नहीं। और वहां खुशखबरी देने के लिए गए खुद अमरावती में, और इंद्रदेव बड़े प्रसन्न हुए, उनका स्वागत किया, उनकी पूजा की और बड़े धूमधाम से उनका देखभाल किया वहां पर। और जब वो जा रहे थे तो सत्यभामा देवी ने कृष्ण को याद दिलाया, पारिजात वृक्ष, वहां नंदन कानन होते हैं, कानन मतलब जो बगीचे होते हैं, सुंदर सुंदर बगीचे, ऐसे बगीचे है कि यहाँ के बगीचे देखते हैं लगता है कि ये तो कुछ भी नहीं है। तो कृष्ण भगवान ने कहा, ठीक है, ये इंद्र का है, देखो, नहीं मुझे चाहिए, ठीक है। तो सारा वृक्ष का वृक्ष उठा लिया। जब इंद्र को पता चला कि मेरा पारिजात वृक्ष जो नंदन कानन वन में है, जो मेरे भोग के लिए है, ये कोई उठा के ले जा रहा है, तो तुरंत इंद्र को क्रोध आया। इंद्र ने देखा कि कृष्ण भगवान ही उठा के स्वयं ले जा रहे हैं, लेकिन फिर भी उन्होंने कृष्ण भगवान को रोकने का प्रयास किया और वहां युद्ध किया कृष्ण से। देखिए, थोड़े ही समय पहले इंद्र पाही माम करके गए थे कृष्ण के शरण में, रक्षा कीजिए, रक्षा कीजिए। कृष्ण भगवान ने भौमासुर का वध कर दिया और आके अमरावती में खुशखबरी पहुंचा दी। इंद्र ने स्वागत किया, धन्यवाद किया कृष्ण भगवान का। और बस थोड़े क्षण बाद जब अपना पारिजात वृक्ष ले जाना चाहा कृष्ण भगवान ने, तो युद्ध करना चाहा और किया भी इंद्र ने कृष्ण भगवान के साथ में। तो देखिए, और वो है इंद्र, देवताओं के राजा। तो देवता इंद्र का धन्य हो, उनका गौरव हो, लेकिन भरोसा नहीं कर सकते। आप अपने नंदन कानन में रहिए, हमारा पूरा सम्मान है, आपके चरण कमलों में वंदना है, लेकिन हमारी भक्ति रहेगी कृष्ण से। इसलिए हमें दूसरे कोई कर्तव्य नहीं चाहिए, बस हमें कृष्ण पर निर्भर रहना है, क्योंकि कृष्ण ही सब कुछ हमें दे सकते हैं, कृष्ण ही देंगे, हमारे लिए पर्याप्त है, काफी है। कृष्ण के अलावा हमें और कोई चीज की आवश्यकता नहीं है। यह बहुत महत्वपूर्ण चीज होती है, क्योंकि कृष्ण के शरण में जो जाते हैं वो जानते हैं कि कृष्ण अवश्य हमारी रक्षा करेंगे। ये शरणागति के लक्षण होते हैं। आनुकूल्यस्य संकल्पः प्रतिकूल्यस्य विवर्जनम् रक्षिष्यति इति विश्वासो गोपतृत्वे वर्णम् तथा आत्मनिक्षेपकार्पण्यम् षड्विधा शरणागति ही। शरणागति के छह लक्षण होते हैं। पहला लक्षण होता है अनुकूल्यस्य संकल्पः, कि जो भगवान की सेवा के लिए अनुकूल है उसको दृढ़ता से स्वीकार करना। दूसरी बात, प्रतिकूल्यस्य विवर्जनम्, जो भगवान की सेवा के लिए प्रतिकूल है उसको त्यागना। और कैसे त्यागना? दृढ़ता से त्यागना। मान लीजिए कि टेलीविजन अभी हमारे भक्ति के लिए, सेवा के लिए अच्छा नहीं है, तो त्यागने का मतलब ये नहीं कि कभी कभी त्यागें लेकिन कभी कभी नहीं त्यागें, ऐसा नहीं। त्यागें तो दृढ़ता से त्यागें। और फिर रक्षिष्यति इति विश्वासो, भगवान मेरी रक्षा करेंगे, यह पूर्ण विश्वास होना, यह बहुत महत्वपूर्ण चीज है। संशय नहीं करना, बचाएंगे नहीं बचाएंगे, बचाएंगे नहीं बचाएंगे, हेड और टेल, टेल टॉस करेंगे, भगवान बचाएंगे कि नहीं, सिक्का इस तरफ आ गया तो बचाएंगे, उस तरफ आ गया तो नहीं बचाएंगे, नहीं, पूरा विश्वास, जो भी हो भगवान मेरी रक्षा करेंगे। गोपतृत्व वर्णम, मतलब भगवान मेरे पालन पोषण करने वाले हैं, मेंटेनर, वही मेरा पालन पोषण करते हैं, मेरी आवश्यकताओं की पूर्ति वही करते हैं। ऐसा नहीं कि मेरे फैक्ट्री का मालिक कर रहा है, ऐसा नहीं कि मेरे बुद्धि से हो रहा है, मेरे बल से हो रहा है, ऐसा नहीं कि राजा कर रहा है, नहीं, कृष्ण कर रहे हैं। और फिर आत्मनिक्षेप कार्पण्यम, आत्मनिक्षेप मतलब पूरी तरह से यह विश्वास होना कि भगवान ही मेरे इच्छाओं की पूर्ति कर सकते हैं, भगवान के अनुमति के बिना मेरे एक भी इच्छा पूरी नहीं हो सकती, संसार में कुछ भी नहीं हो सकता, क्योंकि जीव को इच्छा रखने की स्वतंत्रता है, लेकिन इन इच्छाओं की पूर्ति करने के लिए कोई क्षमता, कोई इच्छा नहीं है। वो पूरी तरह से भगवान श्री कृष्ण के ऊपर अपने इच्छाओं की पूर्ति के लिए निर्भर रहता है। और आगे चल के कार्पण्यम, कार्पण्यम मतलब अपने को बहुत दीन समझना, बहुत नम्र, बहुत छोटा, बहुत तुच्छ समझना, तो ये शरणागति के लक्षण होते हैं। इसलिए जो भक्त होते हैं वो सोचते हैं कि भगवान है रक्षा करने के लिए, और किसी भी चीज की क्या आवश्यकता है मेरे लिए, ना इंद्र चाहिए, ना वरुण चाहिए, ना कोई भी चाहिए, मेरे पास कृष्ण है। इसलिए माधवेंद्र पुरी, जिनके बारे में कल चर्चा कर रहे थे, जो कि चैतन्य महाप्रभु रूपी वृक्ष के जड़ हैं, उन्होंने प्रार्थना की है, संध्या वंदनम भद्रमस्तु भवतो भो स्नान तुभ्यम नमो, भो देवाः पितरश्च तर्पण विधौ नाहम क्षमः क्षम्यताम, नाहम यत्र क्वापि निषद्य यादव कुलोत्तमस्य क्षमः क्षम्यताम, स्मारम स्मारम अघम हरामि तद अलम किम अन्येन मे। माधवेंद्र पूरी प्रार्थना करते हैं कि मैं तो कृष्ण का स्मरण कर रहा हूं, किन कृष्ण का, यादव कुलोत्तमस्य, यादव यदुकुल के जो उत्तम श्रेष्ठ पुरुष हैं उनका, कंस द्विषः, कंस को जिसने मार डाला था, कंस का शत्रु, उस कृष्ण का मैं स्मरण कर रहा हूं, स्मारम स्मारम, जिससे क्या होता है, अघम हरामि, अघ मतलब पाप, अनघ मतलब जो पाप जिसका नहीं है, पापों से शुद्ध है, अघम हरामि मतलब जिन श्री कृष्ण का स्मरण करने से हमारे पाप हरण हो जाते हैं, जो श्री कृष्ण हमारे पापों को हरण कर लेते हैं। तो माधवेंद्र पुरी बता रहे हैं, जब मैं बैठे बैठे, खड़े खड़े, सोए सोए अगर उन श्री कृष्ण का स्मरण कर रहा हूं जिनके स्मरण मात्र से इतने सारे पाप नष्ट हो जाते हैं, तद अलम मन्ये, ये मेरे लिए काफी है, किम अन्येन में, और किसी चीज की क्या आवश्यकता है मेरे लिए। और किन चीजों की बातें कर रहे हैं माधवेंद्र पुरी, वो कहते हैं मैं तो ब्राह्मण हूं, ब्राह्मण को चाहिए कि संध्या वंदन करे। तो माधवेंद्र पुरी क्या कह रहे हैं, हे संध्या वंदन भद्रमस्तु भवतो, आपको जय जय हो, आपका जय जयकार हो, लेकिन आपके लिए मुझे समय नहीं है। क्यों, क्योंकि मैं श्री कृष्ण का स्मरण कर रहा हूं। संध्या वंदन भद्रमस्तु भवतो भो स्नान तुभ्यम नमो, हे स्नान स्नान, क्योंकि ब्राह्मण को हमेशा स्नान करना पड़ता है, दिन में 3 बार, प्रातः काल में, फिर दोपहर को 12 बजे, और फिर संध्या काल में। तो माधवेंद्र पुरी कहते हैं नियमित तौर से यही समय स्नान करना, नहीं करना, हे स्नान माता आपका जय जयकार हो, आपके लिए भी मुझे समय नहीं है। भो देवा, हे देवतागण, इंद्र देव, वरुण देव इत्यादि, सूर्य देव, अग्नि देव, आपका जय जयकार हो, लेकिन आपके लिए समय नहीं है, कृपा करें, क्योंकि मैं श्री कृष्ण का स्मरण कर रहा हूं। भो देवाः पितरश्च तर्पण विधो, हे पितृगण, आपको तर्पण पिंड श्राद्ध करने के लिए मुझे समय नहीं है, कृपा करें, क्योंकि मैं श्री कृष्ण का स्मरण कर रहा हूं। नाहम क्षमा क्षम्यता, मुझे क्षमा कीजिए कि आपके लिए मुझे समय नहीं है, क्योंकि मैं श्री कृष्ण का स्मरण कर रहा हूं। इस तरह से भगवान श्री कृष्ण के भक्त जो होते हैं हमेशा केवल कृष्ण की भक्ति में ही लगे रहते हैं और किसी चीज के ऊपर निर्भर नहीं होते। इसका मतलब ये नहीं कि हमें स्नान नहीं करना चाहिए, या हमें जो जिन्होंने दूसरी दीक्षा ली है उनको गायत्री मंत्र नहीं करना चाहिए या श्राद्ध नहीं करना चाहिए। कहने का मतलब है कि माधवेंद्र पुरी जैसे महान भक्त ऐसे स्तर में पहुंच चुके होते हैं जहां वो केवल कृष्ण के ऊपर निर्भर है, इसलिए और कोई भी नियम संसार का उनके ऊपर लागू नहीं होता है। श्रुति विप्रतिपन्नाते यदा स्थास्यते निश्चला, अगर कोई व्यक्ति इन वेदों के कर्मकांड और ये सब देवताओं की पूजा इत्यादि इससे परे हो चुका है, तदा योगम अवाप्स्यति, वो वास्तव में योग में स्थित होता है। ये है योग। योग का मतलब ये नहीं कि अपने नाक को चपटा कर देना जमीन पे, या सिर पे खड़ा हो जाना, पैरों को ऊपर करना, या पैरों को कहीं पेट के भीतर ले जाना, यह योग नहीं है। योग का मतलब है स्थास्यति निश्चला, समाधौ अचला बुद्धि ही, समाधि में स्थिर होकर बुद्धि को स्थिर करना। बुद्धि परिअवतिष्ठते, बुद्धि को स्थिर करके शुद्ध करना, मन को शांत करना, वश में करना, इंद्रियों को वश में करना, और मन इंद्रियों बुद्धि को भगवान श्री कृष्ण के ऊपर केंद्रित करना, ये योग है। तानि सर्वाणि संयम्य युक्त आसीत मत्परः, वशे ही यस्य इंद्रियाणि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। दूसरे अध्याय में भगवान श्री कृष्ण बताते हैं कि जो बुद्धिमान व्यक्ति होता है, तानि सर्वाणि संयम्य युक्त आसीत मत्परः, अपने सारे इंद्रियों को बुद्धि को क्या करता है, भगवान श्री कृष्ण में केंद्रित कर देता है। वशे ही यस्य इंद्रियाणि, इंद्रियों को वश में कर लेता है, और ऐसे व्यक्ति को स्थित प्रज्ञ कहते हैं। तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता, उसकी प्रज्ञा, उसकी चेतना जो है वो कृष्ण के ऊपर केंद्रित हो चुकी होती है। इसलिए ऐसे व्यक्ति को वेदों के कर्मकांड इत्यादि से मन विचलित करने की आवश्यकता नहीं है, वो तो पूरी तरह से भगवान श्री कृष्ण के ऊपर निर्भर है। वो जानता है कि जब भगवान श्री कृष्ण है तो और किसकी क्या आवश्यकता होती है। यावान अर्थ उदपाने सर्वतः संप्रुतोदके, तावान सर्वेषु वेदेषु ब्राह्मणस्य विजानतः, जब मैं सागर के पास हूं तो और छोटी छोटी नदियों की क्या आवश्यकता है। तो इस तरह से जो भगवान श्री कृष्ण के भक्त होते हैं वो न वर्षा के लिए, न सूरज के लिए, न गर्मी के लिए, न ठंडी के लिए देवी देवताओं के ऊपर निर्भर रहते हैं। वो जानते हैं कि मैं भक्ति करता रहूं, कृष्ण भक्ति करता रहूं, सारी आवश्यकताएं हो जाएंगी पूरी। योग क्षेमम वहाम्यहम, ये हमारा फॉर्मूला है, ये LIC का फॉर्मूला है, लेकिन इसमें विश्वास मत कीजिए। LIC आपकी योग क्षेम वहाम्यहम नहीं कर सकते हैं। बम्बई में LIC का बड़ा बिल्डिंग है जिसमें इनका ये योग क्षेम भवन कहते हैं। LIC योग क्षेम नहीं कर सकते हमारे, लेकिन श्री कृष्ण योग क्षेम वहां में हम वो कर सकते हैं। इसलिए उनके ऊपर निर्भर रहकर, उनके पवित्र नामों का जाप करके अपने जीवन को हम सफल बना सकते हैं। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण। कोई टीका टिप्पणी प्रश्न?
देवताओं की जो स्थिति है जो आपने बताई, तो भक्ति में उनकी स्थिति क्या होती है, विधा होती है, तो क्या अगर भगवान की कृपा संपादन करना है या भगवान के पास जाना है तो उनको फिर वहीं से जा सकते हैं, उनको भी भूलोक में फिर आना पड़ता है
वहां से जाने के लिए? इसलिए भागवत में बताया है कि भारतवर्ष में सब जन्म लेने के लिए लाइन में खड़े हैं, तुम ही रांगेत आहत, क्योंकि देवलोक में भक्ति करना बहुत मुश्किल है। इतने सारे अप्सराए हैं, इतने नंदन कानन वन है, सोमरस है, क्या नहीं है, पारिजात वृक्ष है, वहां कोई हो कि कष्ट मेरे जीवन में आते रहे ताकि आपका स्मरण होता रहे। जब सब कुछ इतना भोग का वातावरण हो जाता है तो कृष्ण का स्मरण करना बहुत कठिन हो जाता है। लेकिन दूसरी ओर कष्ट बहुत अधिक भी हो फिर भी भगवान का स्मरण नहीं होता, जैसे नरक लोक में। नरक लोक में इतना कष्ट होता है, इतना कष्ट होता है कि कोई भगवान का स्मरण नहीं कर सकता। उपवास के दिन जाप करते समय आपको इसका अनुभव हुआ होगा, जब अंदर से वैश्वानर और भगवान का और एक रूप पुकार रहा है, आपको पेट के आपके पेट को जलाने की धमकी दे रहा है, भूख लग रही है, उधर हरे कृष्ण ये क्या हरे कृष्ण, भी जरा पेट भरना है पहले, है ना। तो ज्यादा कष्ट होता है तो भगवान का स्मरण नहीं होता। इसलिए पृथ्वी लोक का जो स्थान है वो बीच का स्थान है, न ज्यादा भोग और न ज्यादा कष्ट, और पृथ्वी लोक के ऊपर भी भारतवर्ष उपयुक्त स्थान है। आप यूरोप अमेरिका में जाएंगे वहां भी भोग के साधन कितने हैं, और अफ्रीका वगैरह में जाएंगे वहां कितनी कठिनाई है, और पृथ्वी लोक में भी भारतवर्ष बीच का स्थान है। इसलिए भारतवर्ष ही भगवान की भक्ति करने के लिए सबसे उत्तम स्थान है, और भारतवर्ष में भी बेलगाम सबसे उत्तम स्थान है भक्ति करने के लिए। इसलिए जो बेलगाम में भगवान की भक्ति कर रहे हैं बड़े भाग्यशाली है। हर एक व्यक्ति के ऊपर है कि किस इस फायदा का उपयोग वो कैसे करता है। लेकिन थोड़े देवता हैं ऊपर के लोगों के, स्वर्ग लोक के नहीं, जैसे ब्रह्म लोक इत्यादि के हैं, ब्रह्म लोक के निवासी थोड़े कभी कभी जा सकते हैं गोलोक वृंदावन डायरेक्ट, लेकिन स्वर्ग लोक से जाना कठिन है। हाँ अभी जो आपको भक्त के जन्म घर में जन्म लेगा क्या होगा, इसका जवाब भगवान श्री कृष्ण गीता के 6 अध्याय में देते हैं। प्राप्य पुण्य कृताम लोकान उषित्वा शाश्वती समाह शुचिनाम श्रीमताम गेहे योग भ्रष्टो भजायते। वो बताते हैं कि जो योग भ्रष्ट होते हैं अर्थात जिनकी भक्ति की परिपूर्णता नहीं हुई है, जो 100% शुद्ध होकर भगवान के धाम में नहीं जा पाए हैं, उनको पुनर्जन्म लेना पड़ेगा। लेकिन कैसे लोगों की प्राप्ति होगी, प्राप्य पुण्य कृताम लोकान, उन लोगों की प्राप्ति करेंगे जो पुण्य करने वालों को प्राप्त होते हैं अर्थात देवलोक। तो देवलोकों में जाएंगे उषित्वा शाश्वती समाह और लंबे जीवन जिएंगे, हजारों हजारों सालों का जीवन जिएंगे जैसे कि देवता जीते हैं, और उसके पश्चात शुचिनाम श्रीमताम गेहे योग भ्रष्ट अभिजायते, और उसके बाद 2 प्रकार के परिवार में जन्म ले सकते हैं, शुचिनाम और श्रीमताम। शुचिनाम मतलब जो ब्राह्मण है, और श्रीमताम मतलब किसी अमीर परिवार की। तो जो कम प्रगति करके भक्ति छोड़ देते हैं या तो फिर उनकी मृत्यु हो जाती है तो ये उनकी गति होती है। लेकिन जो बहुत आगे बढ़ चुके होते हैं भक्ति मार्ग में और थोड़े ही मात्राओं के लिए वो पीछे रह गए, 90% हो गया होगा, 80% हो गया होगा, तो फिर उनको देवलोक नहीं जाना पड़ता, वो डायरेक्ट उनको वैष्णव के घर में जन्म मिल जाता है। तो जो कम भक्ति करते हैं तो बहुत समय फिर चला जाता है, क्योंकि हजारों साल देवलोक में रहना पड़ता है और वहां पे अच्छी तरह से सेवा नहीं कर सकते, फिर आकर यहां जन्म मिलेगा लेकिन इतना समय बीत चुका होता है, तो इसी जन्म में वापस जाने का प्रयास करना चाहिए गोलोक वृंदावन। लेकिन फिर भी नहीं हो पाया, कम से कम 80% अगर भी कर लें तो अगले जन्म में वैष्णव के घर में जन्म लेने का गारंटी तो है कम से कम, तो ये हमारे लिए अच्छा है। प्रश्न ये है कि इंद्र बाल बार बार क्यों ऐसे कृष्ण के प्रति अपराध करते हैं? क्या वो भक्त नहीं है? हैं, लेकिन हमारे भक्तों के समाज में ही देखिए क्यों। क्या हमें मालूम नहीं है कि कृष्ण भगवान है, फिर भी हम क्यों बीच बीच में इंद्र तृप्ति में फिसल जाते हैं? क्योंकि भक्ति की परिपक्वता या परिपूर्णता नहीं हुई है। तो इंद्र तृप्ति या भौतिक संसार का कि जो डिजाइन है, जो जो भगवान ने इसको इस तरह से इसकी रचना की है कि बार बार विस्मृति हो जाती है, इसलिए ऐसे एक अनुकूल वातावरण चाहिए जिसमें भगवान का स्मरण हो सके। और स्वर्गलोक में ऐसा वातावरण नहीं है, और इंद्रदेव को तो ऐसा ऊंचा पद है, देवताओं के राजा वो भी। तो देवताओं के राजा होने के नाते कभी कभी उनको घमंड आ जाता है, इसलिए जो भी अलग अलग पद में हैं उनको हमेशा सावधान रहना चाहिए। हम भी छोटे छोटे इंद्र बनने का प्रयास करते हैं अपने अपने क्षेत्रों में, बड़ा इंद्र छोटा इंद्र कोई फर्क नहीं, भावना वही होती है। इसलिए हर एक व्यक्ति को होशियार रहना चाहिए, सावधान रहना चाहिए, खास करके भक्ति करते समय, ताकि भगवान के प्रति वैष्णवों के प्रति अपराध न हो। हमें बहुत संभल के रहना चाहिए, क्योंकि अगर हम सावधान न रहे तो इंद्र तृप्ति में फिर से फिसल जा सकते हैं। लेकिन यमराज जैसे शुद्ध भक्त हैं, और भी देवताओं में से हैं जो शुद्ध भक्त हैं, तो वो फिसलते नहीं, वो हमेशा भगवान की सेवा में रहते हैं। लेकिन थोड़े देवता ऐसे हैं जो मिश्र भक्त हैं, उनकी भक्ति मिश्रित है, थोड़ा भोग भी है थोड़ी भक्ति भी है, जो कि हमारी अवस्था है। हम भक्ति तो कर रहे हैं लेकिन पूरी तरह से भोग की भावना हृदय से नहीं साफ हो चुकी है। थोड़ा बहुत ये भी चाहते हैं, रसगुल्ला वगैरह मिल जाए कुछ साथ साथ, ठीक है, और थोड़ा कुछ आराम भी मिल जाए, वो भी मिल जाए, ठीक है।
तो भक्त थोड़ी सी जो भक्ति करता है वो ब्राह्मण परिवार में या अमीर परिवार में उनका जन्म हो जाता है, लेकिन जब वो अमीर परिवार में भक्त इसका ब्राह्मण परिवार में जाने के बाद उनके भक्ति वो वैष्णव बनेगा या नहीं बनेगा बोल नहीं सकते। लेकिन हम बोलते हैं कि जिन्हें भगवान का एक दफा नाम लिया वो वैष्णव बन गया, लेकिन उन्हें अगले जन्म में जब वो ब्राह्मण के घर में या अमीर घर में जाते वो वैष्णव उसकी कंटिन्यू होगी या नहीं होगी बोल नहीं सकते, तो उसका आगे फिर वो वैष्णव बनने के वास्ते क्या करना चाहिए?
जैसे एक विद्यार्थी है, पहली कक्षा में पास होता है, दूसरे तीसरे पांचवे में जाता है, वो तो विद्यार्थी ही रहेगा ना, चाहे बीए एमए भी जाए लेकिन विद्यार्थी ही है, स्तर में अंतर है लेकिन है विद्यार्थी। अगर बीच में वो विद्यार्थी पढ़ाई छोड़ देगा तो पुनः विद्यार्थी कैसे बन सकता है? बस फिर से स्कूल कॉलेज में जाना है, हो जाएगा विद्यार्थी, उसकी इच्छा के ऊपर है, बीच में छोड़ भी सकता है, पढ़ाई जारी भी रख सकता है। उसी तरह से एक बार जो नाम लेता है वो भी वैष्णव है, वो तो सही है लेकिन उतना काफी नहीं है, आगे भी बढ़ना है। जैसे पहली कक्षा में जो विद्यार्थी वो भी विद्यार्थी है लेकिन उसको आगे भी तो बढ़ना है। तो जो व्यक्ति भगवान का नाम लेता है एक बार दो बार फिर आगे प्रगति नहीं करता, वो तो माया के चंगुल में फंस के भगवान को भूल जाएगा। इसीलिए उसे चाहिए कि भक्तों के संग में आए और अपने भक्ति में प्रगति करे, वो उसकी स्वेच्छा के ऊपर निर्भर है। ऐसे वक्त ऐसे लोग जब ऐसे परिवार में जन्म लेते हैं तो उनको भक्ति में आगे बढ़ने के लिए एक संधि मिलती है। जैसे अमीर परिवार में जन्म लेने से कम जीवन का संघर्ष कम हो जाएगा। खाने पीने के लिए दो टाइम की दाल रोटी के लिए तो इतना संघर्ष नहीं करना पड़ेगा, वो चिंता तो नहीं रहेगी। तो कम से कम भगवान के लिए समय निकाल पाएगा वो, अगर वो चाहे तो ये उसको सुविधा मिल जाती है। इसलिए भगवान ये चांस देते हैं उनको, ब्राह्मण के परिवार में या तो अमीर व्यक्ति के परिवार में। इसका मतलब ये नहीं कि जो भी अमीर व्यक्ति अमीर परिवार में जन्म लेते हैं वो सब पहले जन्म में योगी थे, नहीं, लेकिन जो भ्रष्ट योगी हैं वो अमर परिवार में जन्म लेते हैं। ठीक है,
तो पहली क्लास लेनी पड़ती है।
हाँ,
तो पहली क्लास में वरना बढ़ता नहीं है, तो नहीं कि दूसरे जन्म में जिस क्लास से उसकी डेथ हुई है तो उसी क्लास में उसको एडमिशन मिलेगा।
बहुत अच्छा प्रश्न है। इसीलिए यही अंतर होता है भक्ति में और भौतिक कार्यों में। ये शिक्षा का एक अच्छा उदाहरण है कि अगर एक लड़का यहाँ पांचवी कक्षा में है और फिर वो मर जाता है और अगले जीवन में जन्म लेता है तो छठी से शुरू नहीं करेगा, उसे ए बी सी डी वो किंडरगार्टन से शुरू करना पड़ेगा। उसी तरह से और एक उदाहरण दे सकते हैं कि किसी व्यक्ति ने 10 लाख रुपए कमाए और उसकी मृत्यु हो गई, ये कोई गारंटी नहीं है कि अगले जन्म में वो ऐसे परिवार में जन्म लेगा जहां 10 लाख रुपए बैंक बैलेंस जमा हो। हो सकता है ऐसे परिवार में जन्म ले जहां 10 लाख का कर्ज है उनके ऊपर, वो भी हो सकता है। लेकिन भक्ति ऐसे नहीं है। भक्ति में क्या होता है, नेहा विक्रमनाशोस्ति प्रत्यवायो न विद्यते स्वल्पम अप्यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्। अगर किसी ने भक्ति में स्वल्पम अप्यस्य थोड़ा सा भी भक्ति की किसी ने, तो क्या होता है, वो कभी नाश नहीं होता। जो 10 पैसे भी उसने कमाए हैं वो 10 पैसे अगले जन्म में भी उसके साथ में आएंगे, भले वो उसका उपयोग करे न करे, लेकिन उसके अकाउंट में जमा रहता है, जाता नहीं है। आध्यात्मिक धन, आध्यात्मिक धन में और भौतिक धन में ये अंतर है। आध्यात्मिक धन जो भी आप कमाते हो भले बाद में आप न कमाओ, लेकिन वो धन हमेशा आपके साथ में रहेगा। भले आपको याद रहे कि मेरे पास वो धन है या न याद रहे, लेकिन आपके अकाउंट में है। तो आपने 10 पैसे कमाए, अगले जन्म से 11 पैसे से आप शुरू करोगे। आपने 10 लाख कमाए आध्यात्मिक धन, तो अगले साल में आप वहीं से शुरू करोगे। भगवान की भक्ति में आप 10% आगे बढ़े इस जन्म में, अगले जन्म में 11% से शुरू करोगे। कोई 90% पहुंच गया, अगले जन्म में 91 से प्रगति करेगा। ठीक है, क्योंकि हम तटस्थ शक्ति हैं। तटस्थ मतलब तट पे है, जो न नदी में न जमीन में, तट पर। और तट पर खड़ा आदमी रहता है तो आदमी को बहुत होशियार रहना पड़ता है ना, क्योंकि जैसे बैलेंस करके रहना पड़ता है। और आदमी का ध्यान कहीं इधर उधर चला गया, अरे वो वृक्ष पे कितने अच्छी पक्षी है, तो वो फिसल के नीचे गिर सकता है ना। उसी तरह से हम तटस्थ शक्ति है। तट में होने के कारण अगर हमारा मन इधर उधर भटक गया भगवान की सेवा से, तो किसी भी क्षण हम अटक सकते हैं माया में, क्योंकि हम अणु हैं, छोटे हैं, कण मात्र हैं, किसी भी समय माया की शक्ति में फंस सकते हैं। इसलिए हमको बहुत सावधान रहना चाहिए, हमारी साधना अच्छी तरह से करनी चाहिए, भक्तों के संग में हमेशा आना चाहिए, नम्र रहना चाहिए। ये सब चीजें हमारे लिए इंश्योरेंस है कि हम गिरेंगे नहीं। वैष्णव अपराध ना करें, ये सब चीजें करेंगे तो फिर गिरने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, आपका प्रश्न था
प्रभु जी, ये अगर जीव किसी ने नया जन्म लिया है तो उसे ये तो याद नहीं रहता कि पहले जन्म में उसने कितना पुण्य किया है, कितना उसने धर्म किया हुआ है, तो उसके लिए तो नए सिरे से ही शुरू करना पड़ता है ना उसे।
नहीं, आप क्या सभी लोग एक समान पैदा होते हैं, सबकी प्रवृत्तियां बराबर सी होती हैं? 10 आदमियों को बिठाइए, 10 बच्चों को बिठाइए और भगवान की मूर्ति सामने रखिए, कीर्तन कीजिए और 10 बच्चों के कैसे आकर्षण उनके प्रति अलग अलग होता है वो देखिए। सबकी अलग अलग प्रवृत्तियां हैं, भले उसे मालूम हो न हो, याद हो न हो, संस्कार पूर्व जन्मों के संस्कार की वजह से प्रवृत्ति बनती है और प्रवृत्ति से पता चलता है, चाहे थोड़े समय के लिए वो भटक भी जाए लेकिन आएगा भगवान के मार्ग में। कभी इस विषय के ऊपर और गहराई में चर्चा करेंगे, छठे अध्याय के अंत में ये बहुत सुंदर सुंदर श्लोक है। ठीक है, आज पीछे
तो जी,
हरे कृष्ण।
वो जो इंद्र जब भी भगवान श्री कृष्ण पारिजात वृक्ष लेके जा रहे थे तभी उन्होंने उनके साथ में युद्ध किया, भगवान वो पारिजात वृक्ष लेके गए या नहीं, उसका कंटिन्यूशन संक्षेप में?
अवश्य लेकर गए। भगवान कोई चीज को ठान लेते हैं तो कौन उनको रोक सकता है, भले वो इंद्र हो या न हो, तो अवश्य ले गए। और अपने द्वारका में उन्होंने उस पारिजात वृक्ष को लगाया। लेकिन वो पारिजात नहीं है वो।
तो जी आपने कहा कि जो भी शरणागति के एक लक्षण होता है कि पूरी तरह से भगवान पे श्रद्धा रखना, तो जो भक्त है वो तीन बहुत स्तर पे रहते हैं, क्या ऐसे नहीं कि शुद्ध भक्त रहते हैं, वो प्राथमिक में कनिष्ठ और मध्यम और उत्तम भक्त भी रहते हैं, तो कौन से भी स्तर में रहे वो क्या भगवान पे पूरी तरह से श्रद्धा रख सकते है?
श्रद्धा शब्द विश्वास का है, सुदृढ़ निश्चय कृष्ण भक्ति कोयले सर्व कर्म कृत होए, ये श्रद्धा की परिभाषा है। कृष्णदास का विराज गोस्वामी करते हैं चैतन्य चरितामृत में। श्रद्धा से भक्त को पहचाना जा सकता है, कितनी गाढ़ कितनी प्रबल उसकी श्रद्धा है उससे पता चलता है कि व्यक्ति भक्ति मार्ग में कितना आगे बढ़ चुका है। जिसकी श्रद्धा कोमल है बहुत जल्दी से डावाडोल हो जाता है, लेकिन जिसकी श्रद्धा अटल है हर परिस्थिति में भगवान का आश्रय नहीं छोड़ता, जैसे प्रहलाद ने कभी नहीं छोड़ा कठिन से कठिन परिस्थिति में, तो श्रद्धा भक्ति में प्रगति करने का मतलब है श्रद्धा का विकास कराना। श्रद्धा की वृद्धि जैसे जैसे होती रहती है वैसे हम समझ सकते हैं कि हम प्रगति कर रहे हैं। तो कोई व्यक्ति भक्ति मार्ग में या भक्ति के पाठशाला में पांचवी में है, कोई दसवीं में, कोई बीए कर रहा है, कोई एमए कर रहा है, लेकिन सभी लोग विद्यार्थी हैं इस पाठशाला में। तो किसी की श्रद्धा कम, किसी की थोड़ी ज्यादा, किसी की और थोड़ी ज्यादा, लेकिन प्रयास हमेशा रहना चाहिए कि श्रद्धा को बढ़ाते रहें। और कोई ऐसा कह नहीं सकता कि मैंने बहुत बढ़ा ली श्रद्धा, आपने काफी है, नहीं। हर एक भक्त को यही सोचना है कि मेरी श्रद्धा कम है और बढ़ाना है श्रद्धा को। ठीक है,
जब कृष्ण भक्ति में लग जाते हैं तो सब लोगों का विरोध होता है, घर में भी सब में भी, तो उस इधर डरते हैं लोग कृष्ण भक्ति में। दूसरा देवता का ये भक्ति किया तो जाने को बोलते हैं, लेकिन भगवान के भक्ति में लग गया तो उसे नहीं छोड़ते, तो क्या करना चाहिए? क्या उसका लड़के का वो टेस्ट रहता है क्या, क्या रहता है?
अब स्कूल में भर्ती करते हैं तो क्या होता है, परीक्षा होती है ना। अगर विद्यार्थी कहे नहीं स्कूल में परीक्षा होती है ये बुरी पद्धति है, हमको सिस्टम ही नहीं चाहिए, हम जाएंगे नहीं स्कूल, तो परीक्षा जो स्कूल में होती है वो अच्छा है या बुरा है? कष्ट होता है ना विद्यार्थी को। कोई ऐसे बच्चे को आज तक आपने देखा है जो हंसी मजाक हंसते हंसते के आज परीक्षा है, 6 महीने में परीक्षा है, हमेशा क्या कहेंगे, परीक्षा है ना। लेकिन फिर भी और एक दृष्टि से देखा जाए तो परीक्षा नहीं होगी तो विद्यार्थी प्रगति कैसे करेगा? उसी कक्षा में क्या जीवन भर रहेगा, तीसरी में, चौथी में, पांचवी में? प्रगति तो करना है, प्रगति करना है तो उसको साबित कैसे करना है कि हम योग्य हुए आगे बढ़ने के लिए, परीक्षा होती है। उसी तरह से भक्ति मार्ग में हमें एक जगह तो रहना है नहीं, हमको प्रगति करना है, तो साबित कैसे करें कृष्ण को कि हम योग्य हैं प्रगति करने के लिए? तो कृष्ण परीक्षा देते हैं, परीक्षा तो देना ही चाहिए। लेकिन जिस तरह से तीसरी कक्षा के बच्चे को दसवीं कक्षा की परीक्षा नहीं दी जाती, तीसरी की ही दी जाती है, उसकी क्षमता को बुद्धि को देखकर परीक्षा दी जाती है, ठीक उसी तरह से भगवान अपनी भक्ति में प्रगति को देखते हैं और ठीक उस हिसाब से हमें परीक्षा देते हैं। भगवान हमें ऐसे